आज तक के पले पोसे सभ्यताओं के अहंकार को धूल चटाने वाले बोध की ललकार है। कभी न देश में बंधते हैं न काल में, इसलिए वे बादशाहियों मुगल बादशाहियों की धौंस के सामने भी नहीं झुकते। हिंदू ब्राह्मणों के कर्मकांडी ढकोसलों के विरुद्ध भी सीना तानकर खड़े मिलते हैं। दोनों ओर की हठ धर्मिता, कर्मकांड, रोजा नमाज आदि के विरुद्ध इसलिए हैं कि इन दोनों सूझत नहीं। राम और रहीम में ईश्वर को बांटकर समूची मानवीय सत्ता ईश्वरी सत्ता को दो फांक कर ये लोग लड़ रहे हैं, जबकि ईश्वर और अल्लाह एक है। ईश्वरीय अनुभूति अविभाज्य है, संपूर्ण है, अखंडित है। उसे न तो बनाया जा सकता है, न विभाजित किया जा सकता है, न खंडित किया जा सकता है। कबीर सत्य के साथ है, उन्होंने सत्य कमाया है, इसलिए वे सत्य पुरुष को गए हैं। उन्होंने सहजता में से सत्य का साक्षात्कार किया, सरलता में ईश्वर का वर्णन किया और सात्विकता को दुनिया के सामने रखा। आज भारत देश और दुनिया में सत्ता, शक्ति, सामूहिक धौंस और धाकड़पने की शास्त्रास्त्र के बल पर अश्लीलता देखने को मिल रही है। शक्तिशाली निर्बल को धमका रहा है, पीट रहा है, जिंदा जला रहा है। उसके पास सत्ता, धन, अस्त्रादि का बल है, सेनाएं हैं, बारूद है और क्रूरता है। इस सबके साथ विनाशकारी विचार दर्शन, जिससे वह अपने हर मानव घाती कृत्य को उचित सिद्ध करने के तर्क गढ़ता रहता है, किंतु कबीर हमें इसकी पहचान भी करवाते हैं। वस्तुतः कबीर दुर्गुणों के विरोधी हैं, दुर्गुणियों के नहीं। आज कबीर की दार्शनिक सोच को हम पुनः झांक कर देखें तो एक ऐसी लकीर खड़ी कर सकता है जिसके सामने अभी तक की हर दार्शनिक सोच छोटी लकीर पड़ जाएगी या गलत सिद्ध हो जाएगी। कबीर ने मानव अस्तित्व को, उसकी स्थिति, चैन के अधिकार और मुक्ति को सर्वोच्च गाया। अनुभव जन्य अनुभूति प्रमाण को स्वीकार किया। सदियों से चले आने के कारण अपनी उपयोगिता खो चुके मृत प्राय सिद्धांतों, अवधारणाओं कबीर ने अस्वीकार कर दिया। आखिन देखी को हर समाज में यथार्थ सत्य है, उसी को प्रमाण माना। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में कबीर ही एकमात्र औषधि जान पड़ते हैं। सांप्रदायिकता के भीषण विस्फोट के क्षणों में कबीर मरहम भी हैं और दिशा भी। तभी वर्तमान दशा सुधर सकती है, क्योंकि इस समस्या का सबसे पहले सामना उन्होंने ही किया, और वह भी तब जब भारत पर उस समय बहुसंख्यक लोगों पर अल्पसंख्यक संप्रदाय का शासन था और मुँह खोलना सीधे मौत को पुकारना था। वर्तमान भारत में लोकतंत्र ने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो भी एक तरफा बयानबाजी और स्वार्थ ईर्ष्या के वशीभूत होकर पूरा देश और समाज दो परस्पर विरोधी खेमों में पड़ता सा लगता रहा है। इससे भविष्य और भी अंधेरा और भयावह लग रहा है। संतुलन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। गहरी सोच और संयमित व्यवहार के छड़ों को कोरी उत्तेजनाओं में निपटाया जा रहा है। यही सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय जन सदियों की गुलामी में इतना तो सीख ही गया है कि खतरा देख कछुए की भांति भीतर दुबक जाओ और मौका मिले तो पहले से ज़्यादा शक्ति एकजुटता का परिचय दो। भारत की बुद्धिजीवी यथार्थ को देखने और संयमित सोच व्यवहार के होने का परिचय नहीं दे पा रहा। लगता है वह दो विरोधी खेमों के पीछे एकत्र हो रहा है। जरा सी अनुकूल स्थितियाँ पाकर रंग, तेवर और विचार या मत बदलने इसे देर नहीं लगती, जबकि समाज की वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। बुद्धिजीवी आज प्रायः परजीवी बन चुका है। उसकी जड़ें समाज में नहीं, अन्यथा समाज का वह बृहत्तर समुदाय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बंटकर राजनीतिज्ञों के पीछे एकत्र होने को बाधित न होता। समाज की नब्ज पहचानने का दावा करने वालों अर्थात साहित्यकारों के साथ समाज नहीं है। सत्ता प्रचार तंत्र की अनुकूलता पाकर यह बुद्धिजीवियों का एक वर्ग प्रदर्शन और प्रदर्शनियां आयोजित करता है। समाज इसे समझाता जानता है। अतः वक्त आ गया है कि बुद्धिजीवी वर्ग में जो सच्चे वास्तविक स्पष्ट होने का जोखिम ले सके, वे वर्तमान स्थिति की गहरी तटस्थ समीक्षा व छानबीन करके ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए सामने आए। खेमों में बटे और विभाजित हो रहे समाज को इन खेमों से बाहर कर रास्ता दिखाने की पहल करें। यह भूमिका अपने समय में संत कवि ने निभाई थी। अकेले ही तत्कालीन शासकों के जुल्म भी सहे थे। अपने अपने वादी घेरों की सुरक्षाओं सुविधाओं से निकले बगैर यह भूमिका संभव न होगी। यह सच्ची कबीरी भूमिका होगी। मात्र कबीर मानो जीव मात्र और प्रकृति की सार्वभौम सत्ता की बात कर सके, सभी को चिंताओं को अपना सके, अपने समकालीन धर्म संप्रदायों के अनुयायी बौद्ध जनों के आचरणगत पतन और भटकावों को देखते हुए कबीर ने सर्वथा पृथक एवं मर्यादित संयमित सात्विक चिंतन पद्धति का विकास किया और समूचे समाज को नैतिक बल की आधार स्थली पर ला खड़ा किया। सामाजिक बिखराव को रोका, विश्रृंखलित होकर बिखराने से बचाया। अतः धर्म के साथ समाज के आचरण को जोड़कर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अपने विचारों के लिए इस हद तक मूल्य चुकाने की गरिमा और आत्मसम्मान की उत्कट भावना की स्थापना कबीर ने की। कबीर विचारों पर अडिग रहे, जरा नहीं डोले, विचलित नहीं हुए। हालांकि उन्हें हर पग पर कष्ट झेलना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा। हर धड़कते हुए कष्ट विरोध संकट से पूर्ण लगातार जीवंत अस्तित्व की खातिर कबीर उस स्थूल अनुभूति तक पहुँचे जहाँ बाहरी संसार की सारी संपत्तियाँ प्राप्त करके भी व्यक्ति नहीं पहुँच पाते। निर्भीक स्वाभिमानी योद्धा गर्वो उन्नत मस्तक से आज सदियों बाद भी अपूर्व अद्वितीय बना हुआ है। तो उन असंख्य जोखिमों की आँच में तपने के बाद उनसे निकलकर ही वास्तव में जीने के उल्लासमय क्षण क्षणों की प्राप्ति संघर्षों के कष्टमय रास्तों से गुजरकर होती है। तमाम आधुनिक अस्तित्ववादियों की सम्मिलित उपलब्धियां भी अकेले कबीर की उपलब्धियों के आगे इसलिए तुच्छ हो जाती है क्योंकि वह स्थिरता सुरक्षा सुख लोभ प्रलोभन स्वार्थ के एकमात्र ठिकाने घर को हथेली पर रखे तिनके से अधिक कुछ नहीं मानती थी और हर क्षण चारों ओर से असुरक्षा अस्थिरता जोखिमों से घिरे रहने में आंतरिक आनंद के सर्वोच्च शिखर कर बन रहे रहते थे। तभी कह सके कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकांठा हाथ जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। शीर्षक मानो प्रेम ही धर्म। समाज कबीर का शिक्षक भी है और प्रेरक भी। दार्शनिक विखंडताओं सामाजिक वर्गगत जटिलताओं और रूढ़ियों तथा धार्मिक बाह्य आचरों से त्रस्त मानव जाति के लिए कबीर ने एक ऐसे वर्गहीन समाज के निर्माण का प्रयास किया जिसमें जीवन की सरसता हो, नैतिकता और मानवता का वास हो। वे वेद भावना से ऊपर उठकर सबको समत्व दृष्टि से देखते हैं। कबीर व्यक्ति की अंतर्निहित एकता में विश्वास रखते हैं। कबीर के वर्गहीन समाज में ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुसलमान में कोई जातिवाद धर्मगत भेद नहीं है। यह भेदभाव मूलक दृष्टि मानवता विरोधी है। जन्म से कोई त्याज्य घृणित और अपवित्र नहीं होता। सत्याचरण मानव प्रेम की नींव है। कबीर मानव की अंतरात्मा को जगाना चाहते थे। वह मानव मूल्यों को मन में विचारों की पवित्रता आचरण की सात्विकता आंतरिक शुचिता की भावना पैदा करना चाहते थे। परोपकार की भावना मानव को ऊंचा उठाती है और सामाजिक चेतना को विकसित करती है। आज प्रजातंत्र में सच्चे इंसान की उसी प्रकार अभाव है जैसा कबीर युग में था। आज की शिक्षा जीवकोपार्जन के लिए है, आचरण के लिए नहीं। इस शिक्षा से न लोग अनुशासन सीख रहे हैं और न विचारों की शुद्धता अपना रहे हैं। विज्ञान जहाँ सुख सुविधा दे रहा है वहाँ विषम सुख की ओर उन्मुख कर रहा है। फलतः अपनी वासनाएं कामनाओं की तृप्ति के लिए व्यक्ति जघन्य कर्म करने में भी नहीं हिचकता। वह स्वार्थी कामी होता जा रहा है और अर्थ के लिए अनर्थ करने पर उतारू है। आज का पंडित अपने तर्क से असत्य को सत्य साबित करने में पीछे नहीं हटता क्योंकि पैसा असत्य से ही बटोरा जा सकता है। आज भी पांडित्य और आचरण में सामंजस्य नहीं है। धर्म केवल झकंडे के लिए है, इसलिए शिक्षा को नई दिशा देने की अपेक्षा है जिससे विज्ञान के साथ आचरण नैतिकता का मेल बैठ सके। प्रजातंत्र ढह गया यदि जनता नैतिकता को ताक पर रख देगी। आज स्कूली शिक्षा से अधिक नैतिक आचरण की अपेक्षा है। यदि समय रहते हम अपने को ठीक रास्ते पर न ला सके तो प्रजा प्रजा को खा जाएगी और परस्पर द्वेष घृणा हिंसा से जनजीवन का स्वातंत्र और उसका हित समाप्त हो जाएगा। आज के समय की मांग है हम इंसान बने। भ्रष्टाचार न प्रजातंत्र को जीवित रहने देगा और न जन जन को। संग्रह की होड़ समाप्त करने के लिए, शस्त्र अस्त्र की होड़ खत्म करने के लिए मानव तत्व की श्रेष्ठता घोषित करनी होगी और उसकी रक्षा के लिए संसार में क्रांति करनी होगी। आज स्वतंत्रता समता केवल कागज पर है, राजनीति से निगल लिया गया है मानव तत्व को। एक ओर धर्म की अंधता, दूसरी ओर राजनीति का जाल, और इन दोनों से बढ़कर पैसे की हवस में सारे बुनियादी मूल्यों को निर्मूल कर रहे हैं। आवश्यकता है हम अपने को पहचाने, सन्मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध हों, राष्ट्र की एकता के लिए सचेत हों और निष्ठापूर्वक अपने समाज को संवारने की यह समदृष्टि ही लूटने खसोटने की प्रवृत्ति को विनष्ट कर सकती है। कबीर एक सर्वमान मानव धर्म के पोषक थे और इसकी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने जिस अभूतपूर्व निर्भीकता और साहस का परिचय दिया वह इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। मानव धर्म अथवा विश्व धर्म की प्रतिष्ठा भौतिक साधनों से सर्वथा असंभव है। इस संदर्भ में किए गए बहिर्मुखी भौतिकी प्रयासों की निस्सारता और व्यर्थता सर्वविदित है। इस युग में प्रमुख दार्शनिक कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जो समाज को वर्ग विशेष का दावा करता था, वर्गों की संख्या द्विगुणित करने में ही सहायक हो सका है और उसका शांति की प्रतिष्ठा संबंधी दावा भी असत्य होकर केवल अशांति को ही जन्म दे सका है। संत कबीरदास जी इस सत्य से पूर्णतः परिचित थे, इसी कारण उन्होंने बहिर्मुखी रेखाओं को उपकरण बनाकर केंद्र को ही साध्य बनाया था। आज का युग जो सभी भौतिक विरोधों को शांत करने के लिए भावात्मक एकता का नारा दे रहा है, कबीर को इसका परिचय बहुत पहले से था। वे भावों से अधिक आत्मिक के आधार पर समाज और सामान्य मानव धर्म के प्रतिष्ठा पर प्रकर्ष दे रहे थे। सर्वधर्म समन्वय के लिए जिस मजबूत आधार की जरूरत होती है वह वस्तु कबीर के पदों में सर्वत्र पाई जाती है। वह बात है भगवान के प्रति अहैतुक और प्रेम मनुष्य मात्र को उसके निर्विशिष्ट रूप में समान समझना। मानव मात्र का अध्यात्म पर आधारित धर्म ही भविष्य की आशा का दीपक है। इस तथ्य की क्रमशः अधिकाधिक अनुभूति हो रही है। एक गुण तत्व एक दिव्य तत्व है जिसकी दृष्टि में हम सब एक हैं और जिस तत्व को पृथ्वी पर मानव जाति ही सर्वोच्च स्थूल आधार है तथा मानव जाति एवं मानव प्राणी ही वे साधक है जिसके द्वारा वह इस धरातल पर क्रमशः अभिव्यक्त होगा। जब तक मनुष्य अपने को शरीर रूप में जानता है, आत्मा के रूप में नहीं जानता, तब तक भ्रातृत्व की अनुभूति नहीं होती। भौतिक वस्तुएं परिणाम में सीमित होने एवं उन पर अधिकार जमाने वालों की संख्या विपुल होने के कारण संघर्ष को जन्म देती हैं। वस्तुओं को ग्रहण करके उन पर अधिकार जमाए रखना भौतिक सफलता का सेतु है, परंतु जब मनुष्य अपने आप को शरीर न समझकर आत्मा समझने लगता है तब उसको ज्ञात होता है कि विभाजन और प्रदान विकास और शक्ति के हेतु हैं। आध्यात्मिक शक्ति व्यवहार में लाने पर बढ़ती है, नष्ट नहीं होती। जितना ही प्रदान करो उतना ही वह वृद्धि को प्राप्त होती है, जितना ही बांटो उतना ही वह पूर्ण अधिकृत एवं आत्मसात होती जाती है। अतएव भ्रातृत्व की जड़ अध्यात्म होनी चाहिए। बाहर से राजकीय विधान के द्वारा उसका सृजन नहीं किया जा सकता, वह तो अंतर से फूटने वाला और आत्मा का जय स्त्रोत होने वाला चाहिए। मनुष्य तत्व और पशुत्व में चाहे कितना ही भेद हो, उसमें मुख्य भेद यह है कि मनुष्य दूसरों के दुख में दुख का अनुभव करता है, अन्य किसी जीव में यह अनुभव शक्ति नहीं है। यह पर दुख कातरता तथा पर सुख में संहिरता की मनुष्य का सर्वप्रधान मनुष्यत्व तथा मानव की सर्वप्रधान मानवता है। यह सुकोमल करुणा जो पुण्य नेत्रों में मंगलाश्रु के रूप में छल छला उठती है, यही यथार्थ मनुष्यत्व है। मानव धर्म ही भविष्य की आशा है, क्योंकि इसका अर्थ है विश्व में स्थित आत्मशक्ति का क्रमशः साक्षात्कार और एक दिव्य यथार्थ का बोध, जिसके अंतर्गत समस्त विश्व है और सब कुछ एक है। कबीर नए धर्म के निर्देशक, नवीन समाज के निर्माता, साथ ही नवीन संस्कृति के नव जागरूक थे। वे केवल विद्रोही व क्रांतिकारी ही नहीं थे, अपितु एक संवेदनशील मानव भी थे। कबीर के समय में धर्म, समाज एवं संस्कृति तीनों का स्वरूप बिगड़ जाता है तथा सभी रूढ़ियों, अंधविश्वासों व जड़ता में घिरे थे। रोती बिलखती मानवता को उन्होंने केवल सांत्वना ही नहीं दी, अपितु जो मार्ग वह भूल चुकी थी उसे पुनः प्रशस्त किया, सोई हुई जनता को झकझोर उठकर उठाया। कबीर का धर्म मानव के कल्याण का धर्म है। समाज के सब लोग भली भांति रहे, अर्थात सब अपने कर्तव्यों का ठीक ठाक पालन करें और आपस में प्रेम भाव से रहे, धर्म के नाम पर अनाचार न हो, यही कबीर का धर्म है, जिसे मोटे रूप से मानव धर्म कह सकते हैं।